देश विदेश की लोक कथाएं।
उत्तर प्रदेश की लोक कथा कलयुगी पति भक्ति। वाचक स्वर राधा पाठक।
क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव, मतलब ये कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। थी भी यही बात। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वो जल भी न पीती। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला ये देखकर हक्के बक्के रह गई। वो तो पति के अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की ना तो सोच सकती थी, इसलिए उसने रहा ना गया। वो बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इतने तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए ये सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वो है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी बड़ी साफ थी। वो बोली, बहन सुशीला ये सब ठकोसलेबाजी मुझसे नहीं होती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसे खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरे पति और हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुन कर रह गई। उसने मुंह चुमिया कर कहा, ये तो सब ठीक है लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वो जल तक न पिए। सहेली ने भी इसका करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में ये बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसके निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे ये जरूर लगता था कि ये सब झोंक है। अगर पति एक महीना तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीना तक रह सकती है? और उसे लगा ये बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। ये सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वो तरह तरह से सुशीला की कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वो देर तक स्नान करता, कभी खेत से ही दोपहर ढले आता। कभी कभी तो ऐसा होता कि परोसी थाली तक सामने होने पर वो बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची डालकर पुए और चिरौंजी, किशमिश, केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आ गया। चीजें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से कहा कि झटपट स्नान कराओ। लेकिन पति तो उस दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए काफी देर तक वो ढील डाले रहा और टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वो बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें मारे भूख के कुल बुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाऊ से ऐसा पैर फिसला कि वो चारों खाने चित हो गया। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और आंखें फैली की फैली रह गई। ये देखा तो सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़कर पति के पास पहुंची। उसका सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा हो तब तो बोले ना, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वो कैसे बोलता। सुशीला की आंखें जबजबा गईं, गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़े मार मार कर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हुआ। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से जी तो नहीं जाएंगे। हाँ, आसपास के लोग जरूर आ जाएंगे, اور تب کھیر پوئے کھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے میں کھیر پوئے چپ چاپ سے کھا لوں، تب رونا دھونا شروع کروں۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ گئی اور جلدی جلدی کھیر اڑانے لگی۔ پوئے اگلے دن کے لیے بھی رکھ لیے کیونکہ خراب ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ اصلیت تو یہ تھی کہ اس کا پتی مرا ہی نہیں تھا بلکہ مرنے کا ناٹک کیے پڑا تھا، اس لیے وہ اپنی پتنی کی ساری حرکتیں دیکھتا رہا۔ جب سوشیلا خوب جی بھر کر کھا چکی، چھت پر منہ دھویا اور لمبا سا گھونگھٹ نکال کر پتی کے پاس گئی، سینے سے چپٹ کر رونے لگی۔ رونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی جاتی تھی، تم تو چلے پرم دھام کو، ہم ہوں سو کچھ بکھو، یعنی کچھ کہو۔ اس کا پتی کچھ دیر تک تو اس کے نکلی پریم اور دکھ کو سہن کرتا رہا، لیکن انت میں اس سے رہا نہ گیا، اور جیسے ہی سوشیلا نے اپنا جملہ تم تو چلے پرم دھام کو، ہم سو تو کچھ بکھا یعنی کہو ختم کیا، ویسے ہی اس کے پتی نے اسے سے ملتا جلتا ایک جملہ جڑ دیا۔ پتی کا جملہ یہ تھا، کھیر سڑوپا کری تو پون کو تو چکھو۔ اب تو سوشیلا کی ایسی حالت ہو گئی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا پتی ناٹک کیے پڑا ہے اور اس کی پریکشا لے رہا ہے۔ من ہی من وہ رہ رہ کر اپنے آپ کو کوستی رہی کہ کیا کیا، کیوں نہ زبان پر قابو رکھ کر بدھی سے کام لیا ہوتا، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی نے سوشیلا کے منہ سے اپنے پتی ورت دھرم کی تعریف نہیں سنی۔ پہلے جسے ڈینگے ہانکنا اب سوشیلا نے بند کر دیا تھا، لیکن ہاں اپنے پتی کے لیے کام وہ یوں ہی کرتی رہی۔
ابھی آپ نے سنی اتر پردیش کی لوک کتھا کلیوگی پتی بھکتی، آڈیو پرستوتی ریڈیو ارپا۔